ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराश भागवतम स्कंद दो अध्याय तीन श्लोक संख्या एक। श्री शुक उवाच एवमेतं निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यत् म्रियमानानां मनुष्येषु मनीषिणां। श्रीशुक उवाच एवमेत् निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यत् म्रियमानानां मनुष्येषु मनीषिणां।
श्रीशुक उवाच
श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह एतत् यह सब निगदितां उत्तरित पृष्टवान् तुम्हारे पूछे जाने पर यत् जो भवान् आपने मम मुझसे नृणाम मानव का यत् जो म्रियमानानां मरणासन्न मनुष्येषु मनुष्यों में मनीषिणां बुद्धिमान मनुष्यों के। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। अनुवाद श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा हे महाराज परीक्षित, जिस प्रकार आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। तात्पर्य सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी हैं और वे प्राय सभी अल्पज्ञ हैं क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत थोड़ा ज्ञान है। प्राय सबों को जीवन की मिथ्या धारणा है क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं, जबकि वे ऐसे है नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हो, किंतु मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य निष्फल हैं। इसलिए लाखों मनुष्यों में से कोई एक अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है, और वेदांत सूत्र, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ता है, किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने पर भी यदि वह गुरु के संपर्क में नहीं आता तो वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान कृष्ण को जान सके। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपावश व्यास देव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्राय पूरी तरह भुला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्तियों भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। ये पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते। अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनुष्य नाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनुष्य नाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत हैं। ये कृत्य विशेष रूप से मरणासन्न व्यक्ति के लिए संस्तुत हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांशां। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, अमल पुराण का मतलब जिसमें भुक्ति मुक्ति आदि की जो वांछा है इच्छा है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। श्रील व्यास देव का सबसे अंतिम जो प्रणयन है, जो अंतिम जो ग्रंथ उन्होंने प्रदान किया है वो श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम में ये जो दूसरा पहला और दूसरा स्कंद जो भगवान के चरण कमल का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद हैं वो भगवान का दिव्य देह है, शरीर है। दशम स्कंद को भगवान का मुख कमल कहा गया है, और श्रीमद् भागवतम के पहले और दूसरे स्कंद को भगवान के दो चरण कमल कहा गया है। तो भगवान को प्राप्ति की अभिलाषा हमें रखनी है तो भगवान के चरण कमलों से हमें आसक्त होने का प्रयास करना चाहिए या चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो हमने पिछले अध्याय में सुना, पिछले अध्याय के जो दो श्लोकास थे वो वास्तव में पूरे श्रीमद् भागवतम का सार उत्तर है। हाँ, शुक परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था पहले ही। तो आज के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं एवं एतद् निगदितम्। निगदितम् मतलब उत्तर मैंने दे दिया है। पृष्टवान यद् भवान, आपने मुझे पूछा था, क्या पूछा था आपने? नृणाम यत् प्रियमानानाम, नृणाम जो मनुष्य है, यत् प्रियमानानाम जो मरणासन्न है, मरने वाले हैं, मनुष्येषु मनीषिणा, मनुष्यों में भी जो मनीषी है, मनीषी मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति। तो ऐसे मरणासन्न व्यक्ति जो बुद्धिमान है, उस व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति का मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है, ये जो आपका प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दिया है। और उत्तर क्या दिया था पिछले श्लोक में, वो कहते हैं तस्मात् सर्वत्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। हे राजा परीक्षित, हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि के हर समय, सर्वदा और सर्वत्र, हर स्थान में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य भगवान नाम, मनुष्य द्वारा ये तीन कार्य करना चाहिए। कभी कभी नहीं करना चाहिए, किसी स्पेसिफिक स्थान में नहीं करना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा सर्वदा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कीर्तनीय सदा हरि। कृष्ण भी भगवद गीता में कहते सततम कीर्तयन्तो मा, सतत करो। और सर्वदा, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर स्थान में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा न नियमिता स्मरणे न कालह। किसी भी स्थान में भगवान का श्रवण करना, उनका गुणगान करना, उनका स्मरण करना, ये हर एक मनुष्य के लिए करणीय चीज है। तो ये पूरा जो उत्तर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। तो वास्तव में इस अध्याय का नाम ही है भक्तिमय सेवा, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। तो इस श्लोक में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, नृणाम यत् म्रियमानानाम। नृणाम, नृणाम मतलब जो मनुष्य है, यत् म्रियमानानाम जो मरणासन्न है, मरने वाले हैं। तो कई बार लिखा जाता है, भक्त लोग कई बार पूछते हैं कि इस्कॉन के प्रवचनों में ज्यादा से ज्यादा चर्चा मृत्यु की करते हैं। कई बार हमें लोगों ने कहा जहां कहा घुमा फिरा के इन तीन चीजों का वर्णन करते हैं भक्त लोग, मृत्यु का वर्णन करते हैं, काम लस्ट का वर्णन करते हैं, और दूसरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में ये हमारी असली बीमारी है, क्योंकि हम इतने अधिक निर्लज्ज हो गए हैं कि हमें बार बार उस चीज को याद दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लिए नेचुरल हो गया है भौतिक भोगों में लगना। इसलिए शास्त्रों में भी अधिक से अधिक इन्हीं चीजों पर बल दिया गया है, इन्हीं चीजों का वर्णन किया गया है। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो प्रसन्नता अनुभव करते हैं इस विषय को सुनने से। मृत्यु, जो भौतिकतावादी है वो सोचते क्या अमंगल बातें कर रहे हो, ये उचित नहीं है, कुछ शुभ शुभ बोलो। मृत्यु का मतलब उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु सर्व अर्हशाह, मृत्यु सारे आसक्तियों को हरने वाला है, मृत्यु हमारे अटैचमेंट को ले जाने वाला है। तो लोग कहते बोलो मत मृत्यु के बारे में, सोचो मत ज्यादा, और सुनो मत। इस प्रकार से जो भौतिकतावादी हैं वो मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, जानना नहीं चाहते, लेकिन वास्तव में इतना बड़ा श्रीमद् भागवतम केवल इसी चीज का उत्तर देने के लिए बनाया गया है, मृत्यु का डिस्क्रिप्शन। तो जो साधक है, जो भगवत भक्ति में लगा है, उसको मृत्यु के बारे में समझना जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, By understanding death, one may surrender to Lord Krishna in advance. मृत्यु को समझने से व्यक्ति एडवांस में ही, मतलब पहले ही भगवान के शरणागत हो जाता है मृत्यु को समझने मात्र से। तो वास्तव में ये जगत के सारे जो कार्यकलाप हैं, विपदा आदि हैं, जो भी घटनाएं हैं, वो हमें एक ही चीज की ओर ले जाती हैं, और वो है कृष्ण के शरणापन्न होना, कृष्ण की शरण ग्रहण करना। और वैसे देखा जाए भगवत गीता में भगवान ने तो पूरा एक अध्याय समर्पित कर दिया है, अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय में किसी चीज की चर्चा है तो केवल किसकी चर्चा है, मृत्यु की। तो ऐसे भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, मेरा दर्शन करने से पहले तुम दर्शन करो। एक दो प्रकार के दर्शन है, फिलोसॉफी को भी दर्शन कहा जाता है, फिलोसॉफी के द्वारा समझो। दूसरा है अपने आंखों से देखो, किस चीज को देखो, इन चार प्रकार के रियल जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको देखने का प्रयास करो। जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, इस प्रकार से ये जो विषय है म्रियमाणानां मृत्यु, हाँ, तो हम सबके लिए है। और ये वास्तव में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, असली दुख है। हम कोई नहीं चाहते इस समस्या को, ये सबके लिए कॉमन है। मृत्यु क्या है, कॉमन है, कोई नहीं छूटा, न पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक, राजा या फिर गरीब व्यक्ति, कोई छूटा इससे नहीं, हर एक के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। और कोई भी व्यक्ति इस मृत्यु को नहीं चाहता, मृत्यु का आलिंगन करना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु हम सबका आलिंगन करेगा। भागवतम में कहा गया है पंचम स्कंध में कि जो काल कन्या है वो हमें आलिंगन करने के लिए आती है, लेकिन हम उसका आलिंगन नहीं करना चाहते, हम भागना चाहते, दूर भागते हैं। और हर एक व्यक्ति चाहे या ना चाहे मृत्यु हमें आलिंगन करेगा, छोड़ेगा नहीं, आज तक कोई छूटा नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो विषय है ये एक साधक के लिए बहुत अधिक मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, हर एक साधक को दो चीजों का हमेशा हमेशा स्मरण रखना चाहिए। वो दो चीजें क्या है, एक है मृत्यु और दूसरा है भगवान का पवित्र नाम। तो किसी ने पूछा क्यों ऐसे करना चाहिए, क्यों इन दोनों का स्मरण रखना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि जब आप मृत्यु को स्मरण रखते हो तो आप तीव्रता आती है आपके आध्यात्मिक जीवन में भगवत भक्ति करने के लिए। ढीला डाला भजन नहीं, ढीली भक्ति नहीं, कैसे होगी फिर, तीव्रेण भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम यजतः, भगवान परम जो पुरुष है उनका भजन में लोगोगे जब आप मृत्यु के अपने आंखों के सामने रखोगे। और नाम का हमेशा स्मरण करने से क्या होगा कि आप मृत्यु से भयभीत नहीं रहोगे। तो इस प्रकार से एक जो साधक है, जो अध्यात्म के मार्ग में चल रहा है, उसके लिए ये दो चीजें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्यों मृत्यु से भयभीत हैं? क्यों मृत्यु से भयभीत हैं? क्योंकि हमारे लिए ये नेचुरल नहीं है, है कि नहीं, नेचुरल नहीं है हमारे लिए। जैसे आप मुंबई में जाओगे तो आप लोकल ट्रेन से जाओगे तो वहां के लोगों के लिए नेचुरल है लटक के जाना बाहर, ट्रेन के बाहर, डिब्बे के बीच में, जहां मर्जी, उनके लिए नेचुरल है। लेकिन हम कभी कभार जाएंगे तो हम लटक नहीं सकते, हमारे लिए क्या है, कष्टप्रद है, भयावह है। तो मृत्यु सब भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है, हमारे लिए अननेचुरल है। और दूसरा क्या है कि हम अपने शरीर से बहुत अधिक आसक्त हैं, बहुत अधिक लगाव है, प्रेम है, इसलिए हमें लगता है ये शरीर अभी मेरा छूट जाएगा, इसलिए हर समय भय लगा रहता है। और कृष्ण कहते हैं क्यों हमें ये नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है मरण, क्योंकि हम मरणशील व्यक्ति नहीं है, मरणशील प्राणी नहीं है। कृष्ण ने इसलिए कहा भगवत गीता में, न जायते म्रियते, हे अर्जुन आपका, आपका मीन्स आप तो ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आपका न जन्म है न मृत्यु है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम् पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप शाश्वत हो, नित्य हो, शरीर का विनाश होगा लेकिन फिर भी आप मरने वाले नहीं हो, इसलिए तो क्योंकि हम मरणशील नहीं है, इसलिए हमें अननेचुरल है। भगवान ने और भी कहा अविनाशी तू तद्विद्धि, आप कौन हो, विनाशशाली नहीं हो, विनाशमय नहीं हो, अविनाशी हो। भगवान ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आप, आपको काटा नहीं जा सकता, आपको जलाया नहीं जा सकता, आपको सुखाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं देही नित्यम अवध्योयम, कि ये जो देही है, एक तो है देह, और इस देह के अंदर जो बैठा है उसको क्या कहते हैं कृष्णा, देही। तो देहे देही नित्यम अवध्योयम, ये जो देही है वो नित्य है, हमेशा के लिए है, और इसका वध नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कृष्ण कहते ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, हे अर्जुन ये जो मेरा अंश है, अरे अंश का मतलब क्या है, सच्चिदानंदमय है, इसका स्वभाव है आनंदमय भ्यासा, आनंद ही इसका नेचुरल स्वभाव है, लेकिन इसके लिए मृत्यु अननेचुरल सा है। तो जब जीव अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, जब जीव अपना खुद उपभोग करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, तो माया निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, माया पकड़ती है और एक थैले में डालती है उसको। आप देखो केकड़े पकड़ते लोग, या फिर कुछ चूहे को पकड़ते हैं, बहुत सारे होते हैं, पकड़ो और बोरी में डालो, फिर उसका वो मुंह बंद कर दो, पकड़ो बोरी में डालो। तो हम जो जीव उसके जैसे ही है, हमें भी माया पकड़ती है, यहां वाले पकड़ते हैं गर्दन, गर्दन में पकड़ के बोरा, बोरा क्या है, बोरा क्या है, शरीर पकड़ के डाल दे। अभी डाल दिया तो ये बेचारा ऐसे बोरे में डाला गया है जो बोरा अचित क्या है, असत और निरानंद, बल्कि इसका स्वभाव क्या है, सत चित और आनंद। तो ऐसी स्थिति है, और ये बोरा ऐसा है, ये शरीर, और इसको ही अपनी पहचान कर बैठता है। इसलिए देह आत्म बुद्धि, देह को ही आत्म मानने की जो बुद्धि है, हाँ ये इसकी स्थिति है। और ऐसे शरीर को ये जो जीवात्मा है वो छोड़ना नहीं चाहता, इस बोरे से ही प्रेम करने लगता है, सबसे प्रिय वस्तु इसको मानता है। क्यों, क्योंकि यही जो बोरा है ये व्हीकल है उसके लिए, गाड़ी है, एंजॉयमेंट प्रदान करने की व्हीकल, भोग करने की व्हीकल है। तो मृत्यु क्या है, भगवान गीता में कहते मृत्यु है वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृणाति नरोपराणि। मृत्यु तो बहुत सरल चीज है, मृत्यु भगवान ने कहा जिस प्रकार से वो वस्त्र पुराने हो जाते हैं हम उनको फेंक देते हैं नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये मृत्यु है। लेकिन वस्त्र हम बदलते हैं रोज तो दुखी थोड़ी होते हैं, बल्कि आनंदित होते हैं, ओ आज मैंने कपड़े बदले बहुत गंदे हो गए थे। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं आत्मा के ऊपर ये वस्त्र है, ये शरीर भिन्न भिन्न शरीर है, वैरायटीज, हम वस्त्र अलग अलग वैरायटीज के पहनना चाहते हैं, तो भगवान ने भी उन वस्त्रों की व्यवस्था की है। हाँ वो वस्त्र है नाना योनि सदा फिरे, नाना प्रकार की बॉडीज उस वस्त्रों के समान जो भगवान ने हमें प्रदान किया है, और हम इस वस्त्रों को बदलते हैं आप फिर भी इतना कष्ट महसूस करते, रोते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं नहीं मेरे कपड़े क्यों उतारे जा रहे हैं। आत्मा ऑलरेडी उसको ड्रेस है, वेल ड्रेस है, आत्मा ने वेल अच्छा ड्रेस धारण किया है सच्चिदानंद, लेकिन अभी इस भौतिक वस्त्र से इतना आसक्त हो गया है, रोता है, चिल्लाता है, छोड़ना नहीं चाहता। तो वास्तव में ये बच्चे की मेंटालिटी है, चाइल्डिश मेंटालिटी। बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे कपड़े पहनाने में कितना परेशानी देते हैं या कपड़े उतारते नहीं, हाँ माता पिता को पता है। तो उसी प्रकार से वास्तव में मृत्यु का मतलब ही है कि हमारे वस्त्र उतारे जा रहे हैं, शरीर हमें बदलना पड़ रहा है, चेंजिंग द अपार्टमेंट। प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु का मतलब है आप अपार्टमेंट चेंज कर रहे हो, आज इस घर में हो, चेंज करो, दूसरे घर में रहो। तो शास्त्र कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, डेथ इज ए वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड इट लास्ट फॉर जस्ट अ मोमेंट। कि जो मृत्यु है ये लाइफ टाइम, एक ही बार ऐसा अनुभव होना है हमें, और वो अनुभव कितने क्षण के लिए है, एक क्षण के लिए है, उसको मृत्यु कहा गया है। लेकिन ये जो एक क्षण है, मृत्यु का जो क्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्षण की तैयारी करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। वो क्षण का मतलब ही है जिसके ऊपर वो क्षण निर्धारित करेगा हमारे भावी जीवन, भावी जीवन को। हाँ जैसे हमारा कोई फोटो खींच रहा है, फ्लैश, फ्लैश कितने सेकंड के लिए होता है, कुछ कुछ सेकंड के लिए। तो हम जैसे हंसेंगे या दुखी होकर ऐसा देखेंगे तो वैसे ही हम फोटोग्राफ आएगा। तो मृत्यु के समय वो फ्लैश, अंतिम जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे नए शरीर का निर्माण करने वाले। और वास्तव में इसीलिए केवल इस अंतिम क्षण की तैयारी करने के लिए ही भागवतम बोला गया है। भागवतम या परीक्षित महाराज ने ये नहीं कहा, या भागवतम में ये नहीं कहा कि कैसे प्रॉपरली रहा जाए जगत में, हाउ टू लिव प्रॉपरली। हमें भागवतम यही बताता है कि हाउ टू डाई प्रॉपरली, कैसे हमें प्रॉपरली मरना है, ये श्रीमद् भागवतम इसके लिए है। और यही उनका प्रश्न है। परीक्षित महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धेन योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों में परम गुरु शुकदेव गोस्वामी, में सिद्धि, सिद्धि क्या है, प्रॉपरली मरना कैसे, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। पुरुषेश्यः यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वदा म्रियमान, जैसे श्लोक में भी म्रियमान आया है, उस पुरुष का क्या कार्य है जो मरने के लिए तैयार है, जो सब मरने वाले हैं। जैसे कई लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन क्या सिखाना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग, क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग में ही भरा हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग। तो हम यहां रहने के लिए नहीं बने हैं, हम किसके लिए बने हैं, मरने के लिए बने हैं। उस दिन एक सॉन्ग को कोट कर रहे थे सैटरडे क्लास में, हम बने तुम बने मरने के लिए, वास्तव में ये होना चाहिए, क्योंकि यही चीज कपिल देव ने लिखी है। उस सॉन्ग में तो कहा है हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, लेकिन कपिल देव कहते हैं कि हम और आप एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम और आप केवल मरने के लिए बने। इसलिए कपिल देव कहते हैं, हाँ वहां वो आसक्ति की बात करते हैं, कपिल देव कहते हैं कि जो स्त्री के लिए पुरुष मृत्यु है और एक पुरुष के लिए एक स्त्री क्या है, मृत्यु है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। हाँ वो कहते हैं एक श्लोक में, हाँ क्योंकि यह आसक्ति, यदि अटैचमेंट है तो वो क्या है, मृत्यु है, आत्म मृत्यु। कपिल देव अपनी माता देवती को, देवती ने जब कई सारे प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा मेरे इंद्रियों पर कैसे मैं वश करूं, और क्या बेटर साधन है जिससे मैं जगत से पार हो सकती हूं, आप मुझे बताइए। तो कपिल देव वर्णन करते हुए कहते हैं, योपयाति शनिर्माया योषित देव विनर्मिता। वो कहते हैं कि जो पुरुष है हाँ उसके लिए उसके नजदीक आती है माया, योषित, योषित मतलब स्त्री या फिर भोग करने वाली जो वस्तु है, योषित देव विनिर्मिता, देव भगवान के द्वारा निर्मित की गई है, तामिक्षित आत्मनो मृत्यु, उसको कैसे देखना चाहिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को, आत्मनो मृत्यु त्रिने कुपमिमापितम, क्योंकि ऐसी जो आसक्ति है एक पुरुष की एक स्त्री के प्रति, वो आसक्ति वास्तव में उस स्त्री की तुलना कपिल देव करते हैं तृण कुप मिमावृतम, जो कुआ है वो हरे हरे घास से ढका हुआ है, बड़ा कलरफुल है, एंजॉयबल है, आनंदमय है, प्लेजर गिविंग है, लेकिन जैसे ही उसमें अटक जाता है तो गिर जाता है नीचे। इस प्रकार से तामिक्षित आत्मनो मृत्यु, आत्मनो मृत्यु वो मृत्यु है एक पुरुष के लिए। और आगे वाले श्लोक में शुक्रदेव कपिल देव कहते हैं फिर स्त्री के लिए भी पुरुष क्या है, मृत्यु है। वो कहते हैं ताम आत्मनो विजानी या ताम आत्मनो विजानी या, उसको भी वैसे ही सोचना चाहिए क्या, पति अपत्य ग्रहात्मकम, पति पुत्र आदि ग्रह आदि क्या है, दैवोपासित दैवोपसादितम मृत्यु मृगयोर गायनम यथा, उसको भी ये सोचना चाहिए यदि मैं इन चीजों में आसक्त होती हूँ तो मेरे लिए ये मृत्यु है, पति आपत्य चिल्ड्रन आदि ग्रह ग्रह जो घर आदि है, दैवोपासितम मृत्यु और दैव के द्वारा ये मृत्यु मेरे लिए बनाया गया है, मृग योर गायनम यथा, जिस प्रकार से एक मृगी जो हिरण है वो बहेलिया के गायन से बहुत अधिक आनंद अनुभव करती है, लेकिन उसको पता नहीं अगले क्षण में ही बाण लगने वाला है जिसके द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी प्रकार से यहाँ कपिल देव कहते हैं कि ये वास्तव में हम बने तुम बने मरने के लिए, हाँ क्योंकि मृत्यु तो बहुत कड़वा सच है, हम अवॉइड करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, नजदीक रहना नहीं चाहते मृत शरीर के, हाँ इसलिए इस लोक को तो भूलोक कहा गया है, लेकिन इसका असली नाम क्या दिया है शास्त्रों में, मृत्यु लोक। यहाँ सारी व्यवस्था है केवल मरने के लिए, हाँ यहाँ जन्म हुआ है तो वास्तव में जन्म नहीं है, वो क्या है, मृत्यु है, क्योंकि जन्म जा हुआ उसके साथ बुढ़ापा है, उसके साथ बीमारी है और उसका अंत मृत्यु में है। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं ए सन इज बॉर्न, ओ यू आर वेरी ग्लैड आई हैव गॉट ए सन, बट इफ यू स्टडी फिलोसॉफिकली नो बर्थ इज नॉट, ही इज नॉट बॉर्न, डेथ इज बॉर्न। प्रभुपाद कहते हैं बहुत आनंद होता है कि वो पुत्र जन्म लिया, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं यदि हमें दर्शन शास्त्र के माध्यम से शास्त्र चक्षु से उसको देखते हैं तो वास्तव में जन्म नहीं हुआ है, वो मृत्यु ने क्या किया है, जन्म लिया है, बिकॉज द ग्रोइंग ऑफ द चाइल्ड मीन्स ही इज डाइंग, इट इज डाइंग, द डाइंग प्रोसेस द वेरी डे द वेरी मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न द डाइंग प्रोसेस बिगिंस। तो जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उसी समय वास्तव में मृत्यु की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई, हर क्षण मर रहे हैं। और वास्तव में मृत्यु को हमारा कॉन्स्टेंट कंपेनियन कहा गया है, कॉन्स्टेंट पार्टनर। अभी हमारे जीवन में तो हम कितने पार्टनर बनाते हैं, बचपन से लेकर नाना प्रकार के अपने मित्र अपने संगी अपने पार्टनर बनाते हैं, लेकिन जीवन के हर मोड में हम अलग अलग पार्टनर को छोड़ के चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक पार्टनर हमसे छुट्टी नहीं लेता और वो है मृत्यु। इसलिए भगवान ने कहा जातश्चहि ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मतलब निश्चित, जिसने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। और भगवान कहते अंतवंत इमे देहा, इस शरीर का अंत होने वाला है। हाँ पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है पृथ्वी दह्यते जेन मेरु चापि विशीर्यते, पृथ्वी भी विनाशशील है, बड़े बड़े पर्वत भी विनाश हो जाता है, शुष्यते सागर जलम शरीरश्च काकथा, कहते अरे बाबा शुष्यते सागर जलम, प्रलय आदि के समय सागर का जल भी सूख जाता है, शरीरश्च काकथा, इस शरीर की क्या कथा है। हाँ, क्या ये विनाशशील नहीं है? हाँ, ये निश्चित विनाशशील है। हाँ, जब कंस के बारे में हम देखते हैं, कुछ आकाशवाणी सुना, केवल मृत्यु के बारे में सुनने मात्र से कितना बड़ा भगवान को अवतरित होना पड़ा। एक व्यक्ति ने मृत्यु के बारे में सुना, मेरा मृत्यु होने वाला है। हाँ, उसको विनाश करने के लिए भगवान अवतरित हुए एक प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा हेतु। तो जब कंस ने सुना कि उनकी मृत्यु होने वाली है, देवकी वसुदेव के जो आठवें पुत्र हैं, तो उनको मारने के लिए तत्पर हो गए देवकी को। तो उस समय वसुदेव प्रयास कर रहे थे बचाने के लिए। तो वसुदेव उनको कहते हैं, कंस को कहते हैं, मृत्युर्जन्म वतां वीर देहे न सहजायते। अरे अरे कंस, मृत्यु तो जन्म लेता है, किसके साथ? देहे न सहजायते, देह के साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेता है। माँ के गर्भ से एक चीज जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म नहीं लेता, उसके साथ मृत्यु भी जन्म लेता है। आद्य वाब्द शतांते वा मृत्युर्वय प्राणी नाम ध्रुव। आद्य मीन्स आज, वा शतांते या सहस्र या सौ वर्षों के बाद प्राणी नाम मृत्यु ध्रुव, ये निश्चित है हर प्राणी के लिए। तो इस जीवन में हमारे कई मित्र होते हैं, या मित्र आदि हमें छोड़कर पीछे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मृत्यु हमें पीछे नहीं छोड़ता, वह हमें अपने सामने रखता है, हर समय सामने रखता है। लेकिन हम इतने ये हैं, विस्मरणशील प्राणी हैं, कि हम सोचते हैं कि मृत्यु मेरे लिए नहीं है। हम यही चीज हम सुनते हैं बारंबार महाभारत के उस श्लोक को, जो युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने पूछा कि जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आनि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्य अतः परम्। आनि अहानि, दिन रात भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, जो भूत हैं, जीव हैं, वो यम के आलय में जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए नहीं, मृत्यु मेरे जीवन में समस्या आने वाली नहीं है, मेरे से जो इसके साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं होने वाला है। हाँ, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये वैसे ही स्थिति है। हाँ, बकरी, लोगों पर बकरी का उदाहरण देते थे, एक बकरी को काट के लटकाया है रोड में, हाँ, और दूसरी बकरी उसके साथ ही उसका गर्दन में रस्सी बांध के उसको घास खिलाया जा रहा है, बड़े आराम से हरा हरा घास खा रही है और वो मस्ती में है, लेकिन वो नहीं देख रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आगे जो लटकाया हुआ है दूसरा, पहला मेरा जो फ्रेंड, मेरा जो कंपेनियन, नेक्स्ट कौन है? मैं हूं। फिर भी इतना दुर्मंद, अंधा हो गया है। प्रभुपद बंगला में कहा करते थे, घुंटे पोरे गोबर हासे। घुंटे पोरे गोबर हासे, गोबर मीन्स काउ डंग। जो गोबर होता है, दो प्रकार के गोबर होते हैं, एक तो सूखा और एक गीला। तो सूखे को जलाया जा रहा है और गीला वाला हंसता है, ओ अभी मेरे लिए नहीं है, लेकिन उस गीले वाले को पता नहीं आपको भी क्या होना है, सूखना है, आप भी ड्राई होने वाले, और जैसे ही ड्राई हो गए उसी समय आपको पटक जाएगा, डाला जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट, हमारे साथ भी वही चीज है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने रेंटेड हाउस रखा है, किराए का घर शरीर। तो ये किराए का घर कभी भी खाली करना पड़ेगा, परमानेंट नहीं है। मृत्यु का मतलब है एक ऐसी तलवार जो आपके गर्दन पर हमेशा के लिए लटकी हुई है और वो कभी भी छूट सकती है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जो मृत्यु का वर्णन करते हैं अपने गीत में, वो कहते हैं, दिन जाय मिछा काजे निशा निद्रा वशे नाही भावी मरण निकट आछे वशे। कहते, दिन तो मेरा व्यर्थ के कार्यकलापों में जा रहा है, नींद तो मेरी सोने में सारी रात जा रही है, नाई भावी में देख नहीं पा रहा हूं कि मरण निकट आचे बसे, मरण मृत्यु मेरे निकट आके बैठा है। बाल मंद खाई हेरी परी चिंता ही नाही भावी ये देहो छाड़ी बको न देन। और मैं मस्त हूं, भाल मंद, अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में कोई चिंता नहीं है, और ये विचार नहीं कर रहा हूं कि मेरा ये शरीर हाँ एक दिन मुझे छोड़ना है। स्मशाने शरीर मम पड़िया रहिबे, विहंग पतंग खाय विहार करिबे। और ये शरीर स्मशान में पड़ा रहेगा और जो कीट पतंग शृगाल गिद्ध आदि इसके ऊपर मंडराते रहेंगे, विहार करेंगे। कुकर शृगाल सब आनंदित होय, महोत्सव करिबे आमार देह लय। कुत्ते शृगाल आदि क्या होंगे? आनंदित होंगे। हाँ, महोत्सव करिबे, महोत्सव मीन्स फिस्ट, उनके लिए फिस्ट होगा ये मेरा शरीर। आमार देह लोवे, ये मेरे देह की स्थिति है। हाँ, मृत्यु की ये स्थिति है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, ओरे मन भलो नहीं लागे ये संसार। अरे मन, ये संसार बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। भलो नहीं लागे, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? जन्म मरण जरा जे संसार आछे भरा, ताहे कि वह आछे बोल सार। वो कहते हैं जन्म मरण जरा जे संसार आछे भरा, बहुत है क्या या इस संसार में? जन्म मरण जरा आदि ये संसार उसी से भरा हुआ है। ताहे कि वह आछे बोल सार। अरे मन देखो, क्या सार सार लेने वाली कोई वस्तु है इस जगत में? नहीं है। तो भक्तिनाथ ठाकुर आगे कहते हैं, इंद्रिय तर्पण सार कोरी को तो दुराचार, शेष लभे मरण इच्छाए। तो इंद्रिय तर्पण में कितना लगोगे, कितना दुराचारमय वर्तन करोगे, केवल इंद्रियों का तर्पण, उनका भरण पोषण करने में, क्योंकि सबका अंत होने वाला है। शेष लभे मरण निच्छाए, अंतिम तो मृत्यु होने वाली है। इसलिए गोपीनाथ आरना सहे जन्म मरण माला। भक्तिनाथ ठाकुर कहते गोपीनाथ मैं बहुत अधिक वेदनामय जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ये जन्म मरण माला ये असहनीय है, सहन नहीं हो सकते। मृत्यु से बचना असंभव है। बड़े बड़े दिग्गज आए, सबने प्रयास किया, लेकिन सबको क्या होना पड़ा? शरणागत होना पड़ा मृत्यु के। हिरण्यकश्यपु, मिस्टर हिरण्यकश्यपु काम देखते हैं, उन्होंने तो इतना तपस्या किया, सब कुछ किया, केवल मृत्यु से बचने के लिए। उन्होंने कहा, न शुष्के न चाद्रे न जले न वन्निना। मेरी जो मृत्यु है वो आर्द्रता के कारण नहीं होनी चाहिए, जल से नहीं होनी चाहिए, अग्नि से नहीं होनी चाहिए, न काष्ठे न कीटे न पाषाणे न वायुना, ना लकड़ी से होनी चाहिए, ना कीट से होनी चाहिए, ना पत्थर से होनी चाहिए। जितना उनका बुद्धि चल रहा था पूरा प्रयास लगाया, लेकिन भगवान कौन है? सर्वाधिक बुद्धिमान है। बुद्धि आपको बुद्धि देने वाले भगवान ही है। आपकी बुद्धि भगवत बुद्धि से परे कैसे हो सकती है? तो मनुष्य चाहे जितना मर्जी अपने टेक्निक्स अपनाए, जितना मर्जी अपना बुद्धि लगाए मृत्यु से बचने के लिए, जैसे हिरण्यकश्यपु से ज्यादा एक्सपर्ट आगे है नहीं कोई, उतना बुद्धिमान, उतना तपस्वी, उतना शक्तिशाली, उतना एबिलिटी धारण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे हिरण्यकश्यपु ने भी कहा, आयुध से नहीं होना चाहिए, मनुष्य से नहीं होना चाहिए, देवताओं से नहीं होना चाहिए, गंधर्वों के द्वारा, किन्नरों के द्वारा, यक्षों के द्वारा, सर्प के द्वारा, विद्याधर के द्वारा, वानर के द्वारा, हिरण के द्वारा, पिशाचिनियों के द्वारा, नाभ्यांतरे न बाह्य तो ना अंतरे, अंद में नहीं और बाहर में नहीं, नाने मरण हेतु भी न दिने न च नक्तम में तो प्रसादात भवे मृति। हे ब्रह्मा, आपकी कृपा से मुझे इन सब चीजों से मृत्यु मेरी रोक दो, नहीं चाहिए मुझे, मरण नहीं चाहिए। हाँ, तो लेकिन ऐसे हिरण्यकश्यपु को भी भगवान ने एक चूहे की तरह मारा। बिल्ली पकड़ती है चूहे को, पहले खेलती है खेलती है और फिर काट देती है। तो हर प्रकार से व्यक्ति मरने से अपनी रक्षा करना चाह रहा है, योजनाएं बना रहा है। एक व्यक्ति जो मरने वाला ही था, तो उन्होंने तो बहुत अपने स्टैचू बना दिए, बहुत सारे अपनी मूर्तियां बना दी। उसको सोचा, मैं यमदूतों को, यमराज ने भेजे होंगे यमदूत, उनको धोखा दूंगा, उनको बिबिल्डर करूंगा, भ्रमित करूंगा, तो अपने जैसे स्टैचू बनाए, रूम भरा पड़ा था 50-100 मूर्तियों से, और ये भी उस स्टैचू के जैसा ही बैठा हुआ या खड़ा था। अभी यमराज यमदूताज आए, उन्होंने देखा क्या हो रहा है, बड़ा डिफिकल्ट है पहचानना जिसको लेने के लिए आए ये तो। तो फिर उनमें, क्योंकि यमराज बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, वो ऐसे बुद्धू लोग नहीं है यमराज, बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने भी क्या किया, अपने साथ एक छोटा सा तिनका लेके आ गए, लंबा। देखो अभी जैसे आप बैठे हो, आप कितना ये कर सकते हो, मतलब ढोंग नहीं कर सकते, आपके कान में कोई कुछ डाल दे तो आप मिल सकते हो। तो यमदूतों ने एक तिनका या कुछ लेके आए, और उन्होंने आपने ये दूसरे यमदूत ने कहा कि नहीं डालो, कान में डालो, बहुत मूर्तियां हैं। तो कई मूर्तियों के कान में डाला, तो इस कान से उस कान में निकला। तो ये यमदूत कहते वाह क्या वंडरफुल है, कौन है वो जिसने बनाया, बहुत बुद्धिमान है। तो ये जो बैठा था कहता मैं हूं। तो यमदूतों ने उसका गला पकड़ा, पाश यम पाश से उसे बांधा और ले जाते हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, गाय गो माकले यम छेड़े ना, वो कहते हैं, एक लेक्चर उन्होंने इस पर दिया था। तो वो कहते हैं गाय गाय में शरीर को गो माकले, गो मीन्स स्टूल। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद ने स्टोरी बताया कि एक व्यक्ति आए से मृत्यु से बचने के लिए, यमदूतों से बचने के लिए अपने शरीर को मल से लेप दिया, चंदन लेपा जाता है, इसने मल पूरा मल को धार लगा दिया पूरे बॉडी में, ताकि उसको सोचा ये सब बहुत गंदा है तो यमदूत मुझे छुट्टी दे देंगे। लेकिन प्रभुपाद उस लेक्चर में कहते हैं कि यमदूत इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने एक सुअर भी अपने साथ लेके और सुअर को छोड़ा। सुअर का काम ही है कुछ ही मिनटों में सफाई कर दी, हाँ यमपाश से उसको पकड़ के ले गए। तो वो कहने का तात्पर्य है कि जितना मर्जी प्रयास करें असंभव है, और वास्तव में हमारे प्रयास कई बार मृत्यु से बचने के लिए होते हैं, लेकिन हम मृत्यु को आमंत्रण देने के लिए पहुंच जाते हैं। वास्तव में वो सारे प्रयास हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। हाँ, जैसे गरुड़ पुराण में श्लोक आता है, न प्राप्त कालो म्रियते विद शरशतेरपि, कि व्यक्ति न प्राप्त कालो म्रियते, मतलब जब तक समय नहीं आएगा तब तक व्यक्ति मरेगा नहीं, चाहे 100 बाण उसके शरीर में चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं एक माता जी थी बहुत ओल्ड, तो वो कहती है कि बेटा बहुत अभी ना खत्म हो रहा है, ना चलना आ रहा है, एक ही जगह बैठी हुई है, तो बहुत असहनीय है, मरण आ जाए, मृत्यु आ जाए। तो एक भक्त था, वो कहता है इतना ही लालाय थे, तो नजदीकी वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक तार चल रही है, तार वहां लटक रही थी, पकड़ो उसको आप मृत्यु से, वो उसको गालियां देने लगे। मतलब वास्तव में हम ये शरीर बिल्कुल असह्य हो जाएगा, कष्टों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम मरना नहीं चाहते। हाँ, कुशाग्रेणे तो संस्पृष्ट प्राप्त कालो न जीवती, एक तो जब तक समय नहीं आता तब तक चाहे 100 बाण लग जाए तभी नहीं मरेगा, लेकिन कुशाग्रेणु तो संस्पृष्ट, केवल कुशाग्रास या कुशी तिनका भी लग जाए शरीर को तो भी मर जाता है। हाँ, जैसे बलराम के उसमें हम देखते हैं, या कई उदाहरण भी देखते हैं, छोटी सी चीज से मर जाता है व्यक्ति, बड़ी बड़ी चीज से बचता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो मृत्यु है या हमारे कई जो प्रयास है मृत्यु से बचने के लिए, वो वास्तव में हमें मृत्यु के नजदीक ले जाते हैं। कंस ने तो प्रयास किया मृत्यु से बचने के लिए, लेकिन वास्तव में अपने मृत्यु को नजदीक जा रहा था, वो तेजी से जा रहा था। जो बच्चा जन्म लिया मारा, और भगवान स्पीड ली जल्दी आके रोने वाले थे। हाँ, उदाहरण आता है भागवत पुराणों में कि व्यासदेव के जो ग्रैंड फादर थे, तो व्यासदेव के ग्रैंड फादर बहुत मृत्यु से भयभीत थे, तो उन्होंने कहा कि ये बेटा मैं ना मरना नहीं चाहता, कुछ ऐसा करो कि मृत्यु ना आ जाए मेरे पास, सबको मरना पड़ता। उन्होंने कहा मैंने तो सुना नहीं, व्यासदेव तो शास्त्रविद हैं, उन्होंने कहा मैंने तो सुना नहीं, हाँ किसको मृत्यु नहीं है, सबको मरना है। तो उन्होंने कहा आप तो शक्तावेश अवतार हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ करो, यमराज को अप्रोच करो और मेरे मृत्यु को रोको। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज प्लीज ले चलो। तो वो व्यासदेव ने सोचा ग्रैंडफादर बहुत पीछा लगे हुए हैं तो ले चलता हूँ। तो ये यमराज के पास पहुंचे और यमराज ने कहा, यमराज को व्यासदेव ने रिक्वेस्ट किया कि बस मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मरना नहीं चाहते, इनको आप छुट्टी दे दो, इनके मृत्यु को रोको। तो उन्होंने कहा मैं तो मृत्यु का कंट्रोलर नहीं हूं, मैं तो क्या है, मेरे पास जो जीव आते हैं उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उनके कर्मों के अनुसार बस लिख देता हूँ, क्या ये सजा हाँ इनको मिल जाए। तो कहते मैं ये नहीं हूं, कंट्रोलर नहीं हूं। कंट्रोलर तो महाकाल पुरुष है, वो कंट्रोलर है। तो उन्होंने कहा चलो हम उनके पास चलते हैं। तो इनके पिताजी ने कहा कि आप भी चलिए, कहीं हमें बड़ा काम करवाना होता है तो हम अलग अलग कैटेगरी के पोजीशन के लोगों को ले चलते हैं। अभी इन्होंने कहा व्यासदेव है, अभी कहा यमराज आप भी चलिए ना, थोड़ा ऑफिस में जाते हैं, महाकाल पुरुष के ऑफिस में जाते हैं। ये गए दो और ये भी थे। तो ये तीनों पहुंचे तो महाकाल पुरुष को कहा कि आप प्लीज इनका मृत्यु को रोक दीजिए, ये मरना नहीं चाहते। व्यासदेव ने कहा, उन्होंने कहा मैं तो कंट्रोलर हूं लेकिन जो भाग्य है जिस व्यक्ति का मृत्यु के समय उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं ये चीजें निहित होनी चाहिए, हाँ वो मैं अरेंज करता हूं, बल्कि वो इनके भाग्य में मृत्यु कैसा है वो मुझे पता नहीं है, उसका लेखन किसके पास है, चित्रगुप्त के पास लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा वो चित्रगुप्त से जाके चेक करते हैं कि इनके जीवन में मृत्यु है या नहीं है, या फिर क्या होने से मृत्यु हो जाएगी तो हम सब मिलकर उसको रोक सकते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को उन चीजों को इकट्ठा नहीं आने देंगे तो फिर मृत्यु नहीं होगी। तो अभी यमराज महाकाल पुरुष व्यासदेव ये व्यासदेव के ग्रैंडफादर को लेकर उनके ऑफिस में पहुंचे चित्रगुप्त के, जहाँ सारे फाइल्स ही फाइल्स लगे थे। फिर एक फाइल उठाया, उन्होंने कहा हाँ, इन्होंने कहा बताओ बताओ इनके बारे में बताओ। तो उन्होंने तुरंत कहा कि इनकी तो मृत्यु नहीं है, हाँ इनकी मृत्यु नहीं थी। इतना आनंद हो गया, सब लोग बहुत खुश थे कि अच्छा हम आए इनके ऑफिस में और पता चला हमें मृत्यु नहीं है। लेकिन कहते रुको रुको आगे भी लिखा है, आगे लाइन है जैसे बट लिखते हैं, लेकिन क्या है कि यह यहां लिखा है कि जब ये जो व्यासदेव के ग्रैंडफादर हैं ये जब इन तीन लोगों के एक साथ होंगे, इन तीनों के साथ होंगे तो इनकी मृत्यु होने वाली है। किनके साथ होंगे, व्यासदेव के यमराज और वो महाकाल पुरुष इनके साथ होंगे। और ऑलरेडी ये खुद ने अरेंजमेंट हुई थी, लेकिन जैसे ये सेंटेंस पूरा होता ही नहीं होता चित्रगुप्त का, उसी समय व्यासदेव के जो ग्रैंडफादर है शरीर त्यागते हैं। तो वास्तव में डेट कोई स्टॉपेज नहीं है। लोग सोचते आत्महत्या करूंगा ना सारे टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा, स्टॉपेज नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, नया जन्म लेना पड़ेगा। फुल स्टॉप तो एक ही है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भगवत भक्ति है। तो वास्तव में मृत्यु दूसरी कोई चीज नहीं है, कृष्ण है। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरस्य अहम, मैं मृत्यु हूं। और हे अर्जुन मैं इस युद्ध भूमि में आया हूं इस काल के रूप में। मृत्यु सर्व हरस्य अहम उद्भवस्य भविष्यताम, भविष्य में प्रकट होने वाला हूं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, काल के रूप में सारे लोगों को क्षय करने के लिए आया हूं। तो भक्त और अभक्त, भक्त मृत्यु से भयभीत नहीं होता, हाँ क्योंकि उसको कृष्ण के रूप में देखता है और उसके अंदर भगवत भक्ति से इतना बल आता है कि मृत्यु के सर में पांव रखने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। हाँ श्रीमद् भागवत में हम चौथे स्कंद में पढ़ते हैं ध्रुव महाराज के बारे में, जहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्यो मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। तदोत्तान पद पुत्र, जो उत्तान पाद के जो पुत्र हैं ध्रुव महाराज, दर्शनान्तकमागतम उन्होंने देखा, किसको देखा, मृत्यु को देखा, वो आया था मृत्यु, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के भी सर पे अपना पद रख के आरोहम चढ़ गए। अद्भुतम ग्रहम, ग्रहम मीन्स विमान, आध्यात्मिक जगत का जो विमान के ऊपर उछल जाते हैं। तो इस प्रकार से मृत्यु श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जो भक्त और अभक्तों के मृत्यु में अंतर क्या है, वो बिल्ली का उदाहरण देते थे। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में रखती है, यहाँ से वहां ले जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही बिल्ली उसी मुंह से किसको पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है। हाँ, उसके सारे रोमांच कंपाश सब जागृत हो जाते हैं चूहे के। तो इस प्रकार से भक्त फियरफुल नहीं है। परीक्षित महाराज डरे नहीं थे, उन्होंने आराम से पता चला 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तुरंत उन्होंने प्रॉपर शेल्टर ग्रहण किया। हाँ, साधु शुकदेव गोस्वामी का, क्योंकि भगवान के भक्त नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यत् दर्शिना। चित्रकेतु के बारे में वर्णन आता है कि नारायण परा सर्वे, जो नारायण के प्रति परायण है, आसक्त है, ऐसे जो भगवत भक्त है कुतश्चन बिव्यति, भयभीत नहीं होते नरक अपवर्ग आदि से। तो वास्तव में शरीर के लिए मृत्यु है और आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, लेकिन आत्मा के लिए भी मृत्यु है। प्रभुपाद कहते फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण का विस्मरण हो जाना, ये आत्मा के लिए मृत्यु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को जब हराया, जब पंडित आए थे नवदीप में, जग 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 में फेमस थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा यावत मरण नाही उपसन्न है तावत सेवह कृष्ण करिय निश्चय, कि हे केशव काश्मीरी, जब तक मृत्यु नहीं निकट आया है तब तक उससे पहले क्या करो, निश्चय करो कृष्ण की सेवा करने का। और उसी चीज को भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में भी कहते हैं, आजीवा शतेक वर्ष अवश्य मरान निश्चिंतना थाको भाई, कहते आजीवा शतक वर्ष अवश्य मरण, आज या 100 साल में मरण निश्चित है, निश्चिंत ना थाको भाई। अरे भाई निश्चिंत मत रहो, शत शीघ्र पर भजो श्री कृष्ण चरण जीवन ठिकाना है, शीघ्रता करो तीव्रता लाओ, किसमें, कृष्ण के चरणों का भजन करने में, जीवन ठीक नहीं, जीवन सही नहीं है। तो वास्तव में हाँ, जो मृत्यु है, प्रभुपाद ने कहा बाकी चीजें श्योर है या नहीं है, लेकिन एज श्योर एज डेथ, बाकी चीजें श्योर हो सकती या नहीं हो सकती, निश्चित है या नहीं है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति को इस मृत्यु का ट्रीटमेंट ढूंढना चाहिए, डेथ फॉर डेथ। हम भक्त किसके लिए, मृत्यु को भी मारने के लिए है। हमें ऐसी दवाई ढूंढनी चाहिए जो मृत्यु का भी मरण हो जाए, ट्रीटमेंट ढूंढनी चाहिए। और वो ट्रीटमेंट केवल मनुष्य ढूंढ सकता है। इसलिए शास्त्र कहते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको उठना चाहिए, जग जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उसी को कहा जीव जागो गोरा चांद बोले, महाप्रभु ने कहा, क्योंकि मृत्यु तो कृष्ण है, कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण का एनर्जी है। जैसे भगवान ने कहा मम माया दूरतया, माया बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, इसको विजय पाना एकाकी आमार नाही पाए बल, हमें कोई बल नहीं है भगवान की शक्तिशाली माया के ऊपर विजय प्राप्त करना। लेकिन कृष्ण ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, मेरी शरण ग्रहण करने मात्र से माया में विजय प्राप्त कर सकते हो। हाँ, तो ये मनुष्य जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए है। और इसी को राजा रहुगण भरत महाराज को कहते हैं, अहोर्ण जन्म अखिल जन्म शोभनम किम जन्म भीष्म परिरभ्य मुष्मिन, कहते कि अहोर्ण जन्म अखिल जन्म शोभनम, हो ये मनुष्य का जन्म अखिल जन्म शोभनम, सारे जीवनों में सर्वोत्कृष्ट जीवन है। क्यों मनुष्य का जीवन सर्वोत्कृष्ट है? क्यों कि ऋषिकेश यश कृतात्मना महात्मना वा प्रचुर समागम। दो चीजें एक्स्ट्रा है कि ऋषिकेश कृष्ण का गुणगान करने का मौका है इस मनुष्य जीवन में, और महान जो वैष्णवगण है भक्त है उनका संग करने का लाभ इस मनुष्य जीवन में। इसलिए देवतागण भी लालयित रहते पृथ्वी में आकर मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। तो इसलिए वास्तव में जो कार्यकलाप है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। जब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के पास आए भगवान राम को ले जाने के लिए, क्योंकि जो असुर हैं उनके यज्ञ में समस्याएं उत्पन्न करते थे, तो दशरथ महाराज के पास आए विश्वामित्र। तो दशरथ महाराज जो राजर्षि हैं, भगवान के महान भक्त हैं, तो वो विश्वामित्र मुनि को कहते हैं ये हिस्तम यत तत पुनर्जन्म जयाय। वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र मुनि, आपके जो प्रयास है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के वो ठीक से तो चल रहे हैं। तो वास्तव में जो साधक हैं हम सब क्या कर रहे हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के पथ पर चल रहे हैं। तो ये जो मृत्यु है उसके लिए एक ही ट्रीटमेंट शास्त्र वर्णन करते हैं। मुकुंदमाला स्तोत्र में दो तीन श्लोकाज हैं, उनको मैं पढ़ के समापन करता हूँ, जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। कुलशेखर कहते हैं कि वास्तव में ट्रीटमेंट चिकित्सा क्या है मृत्यु की। हे लोका शुणत प्रसूति मरण व्याधे चिकित्सा मिमां योगाज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो याम्याज्ञवल्क्यादया अंतर्ज्योतिरमेयमेकमृतं कृष्णाख्यामापीयतां तत्पीतं परमौषधं वितुनते निर्वाणमात्यंतिकम्। वो कहते हे लोगो, जन्म तथा मृत्यु के रोग के लिए एक ही चिकित्सा है, एक ही उपचार है, और वो क्या है? कृष्णाख्याम। कृष्णाख्य, कृष्णाख्य मतलब कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं कृष्णाख्याम पीयताम, ये जो कृष्ण नाम है इसको पियो। क्या होगा? तत्पीतम परम औषधम, औषध तो बहुत है लेकिन परम औषध तत्पीतम, उसको पीने मात्र से वितुनते प्रदान करती है दवाई। क्या प्रदान करती है? निर्वाणम अत्यंतिकम, ये जो अत्यंतिक दुख है मृत्यु के रूपी उससे हमें मुक्त करती है। इसलिए अगले श्लोक में भी वो कहते हैं कुलशेखर, इदं शरीरं परिणाम पेशलं पतति अवश्यं शतसंधि जर्जरं। इदं शरीरं, ये शरीर परिणाम पेशलं, ये तो अनित्य है, इसका विनाश होने वाला है। पतति अवश्यं, निश्चित रूप से इसका पतन होगा इस शरीर का। शतसंधि जर्जरं, सारे जॉइंट्स ये कष्ट देने वाले हैं। किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख व्यक्ति पूछो ना, इसका दवाई पूछो, औषध पूछो। निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम, तो निरामय जो कृष्ण रसायन है इसको पान करो। तो एक भक्त की यही प्रार्थना होती है, राजा कुलशेखर की प्रार्थना थी, जिसको श्रील प्रभुपाद हमेशा दोहरा करते थे, जिसको हमेशा गायन करते थे, कृष्ण त्वदीया पद पंकज पंजरांतम विदो स्मरणं कुतस्ते। तो ये प्रार्थना वास्तव में मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाली है। कुलशेखर कहते हैं कृष्णा, आपके जो दो चरण कमल हैं वो कमल के डंडल है या कमल है, और मेरा मन रूपी हंस उस कमल में रममान होने दीजिए, क्योंकि अभी मेरा मन आपके चरण कमलों में लग रहा है, लेकिन मेरे शरीर की ऐसी अवस्था आएगी प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, जब मेरा शरीर कफ वात पित्त आदि से मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा उस समय में कैसे आपका स्मरण कर पाऊंगा। इस प्रकार से जो भक्त है वो भगवान से यही प्रार्थना करता है, देवी वा भूमि वा ममास्तु वासो, हे कृष्ण आप मुझे इस जगत में निवास दो या स्वर्ग में निवास दो, नरके वा नरकांतं प्रकामं, चाहे नरक में निवास दो हे नरकासुर को मारने वाले, लेकिन क्या किस चीज का स्मरण दो, चरणों ते मरणे भी चिंतयामि, मृत्यु के समय आपके चरण कमलों का स्मरण मुझे हो जाए। हरिदास ठाकुर ने भी यही कामना की थी, चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वही कहा था कि अंतिम समय में मैं आपके मुख कमल का दर्शन करना चाहता हूँ, आपके दोनों चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और अपनी जिह्वा के द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करना चाहता हूँ। तो वास्तव में यही चिकित्सा है। तो इस श्लोक में जो बुद्धिमान मनुष्येषु मनीषिणा, मनीषिणा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जो कर्तव्य है जिसको शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे रूप से हे परीक्षित आपको बताया है, तो ये प्रियमाना नाम जो महत्वपूर्ण शब्द है इस पर श्रील प्रभुपाद ने अपना लेक्चर दिया है भागवतम का इस श्लोक पर। प्रभुपाद ने कहा इस श्लोक में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआती मृियमाना नाम, हाँ मरणासन्न मरणशील, तो हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण यह है शिक्षा है कि जो मृत्यु है, हाँ जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा दो चीजों का स्मरण रखो, मृत्यु और भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान के प्रति भगवत भक्ति में तीव्रता होगी और हरि नाम से भगवत या मृत्यु का जो भय है हम उससे मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या समीक्षा? दो प्रश्न बताइए।